मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 22 नवंबर 2017 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने युवा साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं नीतीश कुमार, आप गरहपुरा मैसना बिहार से हैं, गौरव कुमार सुल्तानगंज बिहार से हैं और दीपक कुमार आप भी पटना बिहार से ही हैं। नीतीश, गौरव और दीपक आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में हम लोग बातें करेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर पर, जिसे हिंदी में कहते हैं संभार तंत्र। इस पर मैं बाद में आऊंगा, आइए कुछ न्यूज देख लेते हैं। आज कुछ ऐसी न्यूज हैं जिन पर हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बातें कर सकते हैं। मित्रों एक तो लॉजिस्टिक सेक्टर पर न्यूज थी ही, इस पर हम लोग मुख्य विषय के अंतर्गत बात करेंगे। 2-3 और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्र, इन तीनों को मिलाकर आप कह सकते हैं कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा, काफी विस्तार से बात ये न्यूज छपी है कि सरकार ने कहा है कि वो हो सकता है कि शीतकालीन अधिवेशन में 3 तलाक पर एक बिल लेकर आए। आपको मालूम है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उस बेंच ने 3 तलाक को एक प्रकार से असंवैधानिक करार दिया था, यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये कुरान में भी इसका वर्णन नहीं है। तो बट नेचुरल है कि अब 3 तलाक, 3 बार तलाक कहने के आधार पर तलाक देना एक प्रकार से कानूनी रूप से गलत हो गया है। लेकिन यह केवल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, याद रखिए कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो अपने आप में ही कानून होते हैं, लेकिन अब सरकार इस पर कानून ला करके इसे विधिवत तरीके से एक सिस्टमैटिक रूप देना चाह रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल इतना ही कह दिया, बात खत्म हो गई, कानून बन गया, अपने आप में वो कानून बन गया। आगे आने वाले जब इस तरह के कोई मामले होंगे तो डेफिनेटली इसको कोर्ट करके और उसके आधार पर निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन जब बटने चढ़ेगी, जब सरकार उस पर अधिनियम बनाएगी तो बहुत ही डिटेल में बनाएगी, क्या परिस्थितियां किस तरीके से होंगी, किसको मान्यता मिलेगी, किसको मान्यता नहीं मिलेगी, किस तरह की सजाएं होंगी, ये सब तो अब सरकार को बनाना पड़ेगा ना। तो सरकार ने यही कहा है कि अभी जो शीतकालीन अधिवेशन है उस संसद का, उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो बिल लेकर आएगी और देखिए कि इस बिल को पारित होने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हां, बहस के रूप में भले ही उसमें संशोधन हो और अच्छी बात है कि उस पर बहस चलनी भी चाहिए, लेकिन वो पारित हो जाएगा। और आपने न्यूज में यह भी सुना होगा कि शीतकालीन अधिवेशन को लेकर के भी थोड़ी सी एक विवाद की स्थिति आई थी कि सरकार ने नवंबर में शीतकालीन अधिवेशन आमंत्रित नहीं किया, उसको लेकर के कांग्रेस ने कहा था कि ये लोकतंत्र की अवहेलना है। उस पर सरकार ने डिफेंड करते हुए ये कहा कि अवहेलना की बात नहीं है, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव को देखते हुए इसे केवल आगे बढ़ाया गया है। और इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा 2 बार वो कर चुकी है, 2 वर्ष के उन्होंने नाम भी बताया, खैर वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मित्रों ये पहली खबर थी। जो दूसरी खबर है जो न्यूज़पेपर्स में आज आप लोगों ने पढ़ी होगी वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें हमारे देश के जो न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी जी फिर से न्यायाधीश अपॉइंट हो गए हैं, आपके लिए निर्वाचित हो गए हैं, वहां निर्वाचन की प्रक्रिया चलती है। और इसे आज के अखबारों ने बहुत ही हाईलाइट किया है और इस पर एडिटोरियल कमेंट भी किए हैं कि यह भारत की बहुत बड़ी जीत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसको लेकर के मित्रों मैं आपको 1-2 एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। उनकी जो भी प्रक्रिया है, देखिए निर्वाचित होने की अपनी प्रक्रिया है ना, वोटिंग होती है वहां, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत इसका निर्वाचन होता है, तो उसकी अपनी प्रक्रिया है, आपको प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत का जो मुकाबला था वो इनफैक्ट ब्रिटेन के साथ में था, कि ब्रिटेन के न्यायमूर्ति न्यायाधीश बनेंगे या भारत के न्यायमूर्ति न्यायाधीश बनेंगे, उसमें भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और बहुत ही बड़े अंतर से सफलता मिली है। तो उसको इस रूप में देखा जा रहा है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत प्रभावशाली होता जा रहा है दिन पर दिन। और डेफिनेटली जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, बात चल ही रही है, आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बड़े लंबे समय से यह टॉपिक चलता आ रहा है। निश्चित रूप से इस सफलता से उनके इस दावे को, भारत के दावे को मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि उसने एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि अपने पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिखा दिया है। तो ये एक अच्छी घटना हुई है और इस घटना को आप एक कंटेंट के रूप में इस तरीके से लें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति को यह व्यक्त करता है, उसकी शक्ति को दिखाता है कि दुनिया के कितने सारे देश भारत के साथ हैं। मित्रों, एक छोटी सी घटना मैं और बता रहा हूं जो न्यूज में नहीं है, अखबारों में भी ये बहुत हाईलाइट नहीं हुई है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अपने फ्रंट पेज पर लिया है। और वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आपको मालूम है कि पणजी में चल रहा है, उसमें एक फिल्म दिखाई जानी थी एस दुर्गा। आपको मालूम है कि इसकी चर्चा मैंने की थी कि दो फिल्में एस दुर्गा और न्यूड फिल्मों का चयन हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जानी थी, लेकिन मंत्रालय ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाद में इसे न दिखाने का निर्णय लिया और इसके विरोध में जो चयन समिति होती है जो फिल्मों का चयन करती है उसके जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इसके विरोध में, क्योंकि कौन सी फिल्म दिखाई जाए कौन सी फिल्म न दिखाई जाए इसका निर्णय लेने का जो अधिकार है वो चयन समिति का होता है, उसमें सरकार ने हस्तक्षेप किया था उसके विरोध में। इसकी चर्चा मैंने की थी, इसीलिए मैं आज इसकी भी चर्चा करके उसे अपडेट कर रहा हूं कि फिर वो जो फिल्म के निर्देशक थे वो हाई कोर्ट में गए और केरल हाई कोर्ट ने कल ये कहा है कि नहीं, उस फिल्म को दिखाई, वो फिल्म दिखाई जानी चाहिए। उस फिल्म का नाम है एस दुर्गा। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जानी चाहिए। मित्रों, इस बात की चर्चा मैं इस संदर्भ में भी कर रहा हूं कि आप देखिए कि तीन चीजें अभी एक साथ आपको फिल्म जगत में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह चल रहा है जहां दुनिया के बहुत जाने माने फिल्मकार आए हुए हैं, भारत में हैं। दूसरी ओर पद्मावती फिल्म को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है वो आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और तीसरी तरफ केरल हाईकोर्ट का ये डिसीजन है, यानी कि दो फिल्में ड्रॉप की गई वो भी एक मुद्दा बना और इसके बाद फिर अब केरल हाईकोर्ट का यह डिसीजन आया है। तो अब देखते हैं, हो सकता है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाए या उसकी केरल हाई कोर्ट की बात को मान करके अलाउ कर दे कि ठीक है चलिए फिल्म दिखाई जाए। स्थिति जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आप देखें कि खासकर दृष्टिकोण को लें या पॉलिसी को लें, जैसे कि एक नीति होती है किसी भी चीज के बारे में, तो हमारी जो फिल्म की संबंधी नीति है उसके बारे में आपको एक ढीलापन दिखाई देगा, एक लचीलापन दिखाई देगा, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, कि कोई लग रहा है जैसे कि कोई एक फिक्स पॉलिसी नहीं है। फिर यह भी लगता है कि क्या सच में फिल्म जैसी विधा के लिए कोई फिक्स पॉलिसी बनाई जा सकती है या दुनिया के दूसरे देशों में है। तो ये एक कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप अपने दिमाग में केवल रखिए, समय आने पर अपने ढंग से इनका जवाब आपको ढूंढना है और लिखना है, राइट मित्र। तो ये तीन छोटी छोटी खबरें थी। अब मैं आता हूं लॉजिस्टिक सेक्टर पर। कल के न्यूज में आपने लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में एक छोटी सी खबर सुनी है, आइए थोड़ा सा हम इसे जान लेते हैं। खबर कुल मिलाकर की ये है फ्रेंड्स कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है जिसे न्यूज में कहा गया है संभार तंत्र, और मिलिट्री साइंस में क्या जब हिंदी अनुवाद होता है तो इसको एक कहा जाता है रसद विभाग, शायद रसद विभाग से आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। संभार तंत्र, इसे सरकार ने अब आधारभूत सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर की मान्यता दी है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, आपको मालूम है कि सड़कें बन रही हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, बिजली, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, ठीक है, ये हमारे देश के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक तरीके से नींव का काम करती है। अब ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इसे अभी तक आधारभूत ढांचे की मान्यता नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आधारभूत ढांचे की आपको मान्यता मिल जाती है या आपको उद्योग की कुछ अलग तरीके से मान्यताएं मिल जाती हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन होती है। जब किसी को इस तरह की मान्यता दी जाती है तो उस मान्यता को सरकार अपनी तरफ से या उस सेक्टर को सरकार अपनी तरफ से जो सुविधाएं देती है, आप उन सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं। कुल मिलाकर के बात यही है। जैसे संभार तंत्र को अब सरकार ने अगर आधारभूत ढांचे का की मान्यता दे दी है, तो अब संभार तंत्र के लिए यह बहुत सुविधाजनक हो गया है कि वो बाकायदे बैंकों से लोन ले, सस्ती कीमत पर, सस्ते ब्याज दर पर वो लोन ले, या मार्केट से लोन ले, प्रतियोगिता के आधार पर वो मार्केट से लोन ले। तो इस तरह की बहुत सारी जो दूसरी भी सुविधाएं हैं वो इस तंत्र को मिलने लगेंगी, वो उसके लिए एलिजिबल हो गया। अदरवाइज ये था कि लोन अगर उनको लेना भी है तो फिर वो अलग तरीके से उनको लोन मिलेगा। आधारभूत ढांचे को सरकार जो थोड़े से कम ब्याज दरों पर लोन देगी, प्राथमिकता के आधार पर लोन देगी, दूसरी तरह की जो छूट उनको देगी, वो छूट अभी तक जो नहीं मिल रही थी अब वो मिलने लगेगी। तो डेफिनेटली देखिए, इससे सीधी सी बात है कि जो संभार तंत्र है, जो पूरा का पूरा हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, उसके डेवलपमेंट में तेजी आएगी। मेरे समझ से जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, क्लास के स्टूडेंट, वो इस तथ्य को, मेरे इस वाक्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों तेजी आएगी। देखिए, जब आपको सस्ती कीमत पर लोन मिलने लगेगा, यानी कि फाइनेंस होने लगेगा सस्ते ब्याज दरों पर, सस्ती कीमत पर कह रहा हूं मतलब तो सस्ते ब्याज दर ही समझ लीजिए, सस्ते ब्याज दर पर जब आपको धन मिलने लगेगा इसको डेवलप करने के लिए, तो पहली बात तो यह कि आपकी जो लागत होगी उसे बनाने की वो कम हो जाएगी। जब बनाने की लागत कम हो जाएगी तो बट नेचुरल है कि उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलने लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जितने धन की जरूरत है उसमें, उस सेक्टर को, अभी उतना धन नहीं मिल पा रहा है। तो अब जब सरकार उसे आधारभूत ढांचे की मान्यता दे चुकी है तो बट नेचुरल है कि अब उन्हें वो धन मिलने लगेगा, और आधारभूत ढांचा की मान्यता मिलने के बाद अब जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो आने लगेंगे, यहां तक कि विदेशी निवेशक भी इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट में तो वो मार्जिन देखेंगे ना, कि अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो बदले में हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा। तो अब उनको जो रिटर्न का परसेंटेज है, जिसे आप सामान्य भाषा में लाभ कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए, वो उनको दिखाई देगा, तो इसमें और ज्यादा वो निवेश करेंगे। और मित्रों, आप जानते हैं कि भारत को अभी अपने आधारभूत ढांचे को विकसित करने की कितनी अधिक आवश्यकता है, राइट? तो अब मैं आइए थोड़ा सा आपको संभार तंत्र के बारे में बता देता हूं। शायद अभी आप सोच रहे होंगे कि यह होता क्या है, कुछ तो इसका उदाहरण देकर के इसे समझाया जाए। देखिए, मैंने कहा रसद विभाग, बेसिकली ये मिलिट्री साइंस से आया हुआ शब्द है, सैन्य विज्ञान से। देखिए, जब सेना कहीं भी युद्ध के लिए जाती है या कुछ कर रही होती है तो सेना के पास रसद पहुंचाने की, भोजन पहुंचाने की और सामान पहुंचाने की, केवल खाना नहीं, सारी चीजें पहुंचाने के लिए एक पूरी की पूरी एक प्रणाली होती, एक चैन होती है कि उनके पास खाना पहुंचते रहे, उनके पास हथियार पहुंचते रहे, उनके उनकी जो जो भी जरूरतें हैं वो सारी चीजें उन्हें मिलती रहें। तो इसे आप सरल शब्दों में कह सकते हैं सप्लाई चैन, सप्लाई चैन। कल्पना करके देखिए कि एक सेना जो सरहद पे लड़ रही है, अगर उसकी सप्लाई चैन टूट जाए, उनको भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, गोला बारूद नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या हालत होगी? सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आधार बना, इसको लॉजिस्टिक सेक्टर कहते हैं, संभार तंत्र, और इसी को आप अप्लाई कर दीजिए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर जब हम अप्लाई करेंगे तो जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, देखिए उसकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा ये बनेगी। अब फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो सेवंथ बैच के स्टूडेंट हैं इसे बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, कि किसी भी चीज का एक स्थान पर प्रोडक्शन होता है, उसका उत्पादन होता है, राइट? उत्पादन किसके लिए होता है? उत्पादन होता है उपभोग के लिए। तो एक जगह पर उत्पादन हो रहा है और पता नहीं कहां कहां किन किन जगहों पर उसका उपभोग हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि लोग हैं जो उसका उपभोग कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक सेक्टर और कुछ नहीं, ये उत्पादन वाले बिंदु से उपभोग वाले बिंदु तक वस्तु को पहुंचाने का एक माध्यम है। जितनी भी चीजों की जरूरत वस्तु को यहां से उठाकर वहां तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो सारे के सारे लॉजिस्टिक सेक्टर में आते हैं। ये सामान्य परिभाषा के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की चलिए बात करते हैं, तो देखिए आप इंडस्ट्रियल पार्क बनवाइए, बहुत से आप इस तरह के नाम सुनते रहे, इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि एक पूरा का पूरा क्षेत्र जहां आप इंडस्ट्री लगाइए, ये लॉजिस्टिक सेक्टर है। कोल्ड चैन का नाम आपने सुना होगा, कोल्ड चैन जहां हम खराब होने वाली वस्तु, कोल्ड स्टोरेज कह लीजिए सिंपल शब्दों में, जहां हम अपने खराब होने वाली वस्तुओं को रख सके तो कुछ दिनों तक वो ठीक रहे, कोल्ड चैन भी लॉजिस्टिक सेक्टर का हिस्सा होगा। इसी तरह से वेयर हाउस जिसे हम गोदाम कहते हैं, गोदाम आपको चाहिए, वो भी एक तरह लॉजिस्टिक सेक्टर ही है, वो है। ट्रांसपोर्टेशन यहां तक कि जो देखो अपने ट्रकों में सामान भर करके जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप अगर कभी राजमार्गों से गए होंगे, राष्ट्रमार्गों से गए होंगे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां सामान भर के जाती हुई आपको दिखेंगी। ये सारे के सारे लॉजिस्टिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों एक थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी है, मतलब आप कल्पना करके देखिए कि हमारे यहां जो कृषि उत्पाद होता है, ये कैलकुलेट किया गया है ऑलमोस्ट कि हर साल 1,00,000 करोड़ रुपए का जो कृषि उत्पाद है वो खत्म बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए कि कहीं सड़ जा रहा है, हमारे पास गोडाउन नहीं है, ठीक से रखने की जगह नहीं है। 1,00,000 करोड़ रुपए अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज के चैन वगैरह बन जाए, तेज परिवहन के साधन हो जाए, तो कितना हमें इससे एक्सपोर्ट में हम डेवलप कर सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट भी हमारा बहुत आगे बढ़ सकता है। तो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में, विकास तेज करने में लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मित्रों ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बताई है। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, एज इट इज मैं आपको इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से सब देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और खासकर अपने 7th बैच के स्टूडेंट्स के प्रति इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारे मेल मिले हैं जिसमें मैंने उनसे अपील की थी कि वो अब ऑडियो के बारे में क्या महसूस करते हैं, ऑडियो उन्हें कितना अधिक समझ में आ रहा है, तर्क सहित उत्तर दें, क्यों समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में भी बताएं। तो आप लोगों के बहुत से मेल आए हैं और सभी ने तर्कपूर्ण उत्तर दिए हैं, सबका नाम ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है। कुल मिलाकर संक्षिप्त में मैं सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दुर्गेश्वरी त्रिपाठी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से, बबीता सोनी, अंकित वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश, मनीष कुशवाहा धार मध्य प्रदेश, रामचरण बैरवा मालपुरा राजस्थान, शिवांगी गुप्ता आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, रोशनी साहू, मुहर्रम अंसारी, विक्रम कुमार, निशा निमोरिया, अभय चौहान लखनऊ उत्तर प्रदेश, सोनिकेत बांकर, योगेश कुमार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, रौनक कुमार सीतामढ़ी बिहार, बेबी कुमारी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, आशीष कुमार शर्मा गोंडा उत्तर प्रदेश, अनिल रघुवंशी, ब्रह्मदीन वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जितेंद्र सोनी आगर मालवा मध्य प्रदेश, और नानू राम चौधरी राजस्थान। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।